अध्याय चार, उद्धार की योजना। मनुष्य के पतन ने संपूर्ण स्वर्ग को व्यथित कर दिया। परमेश्वर का रचित संसार पाप के प्रकोप से अभिशापित हो गया और उस पर वे प्राणी बस गए जिनका दुर्दशा और मृत्यु से सर्वनाश निश्चित था। व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के लिए कोई भी बचने का रास्ता नहीं था। स्वर्गदूतों का गुणगान थम गया। समस्त स्वर्ग पाप द्वारा लाए गए विनाश के कारण शोकग्रस्त था। परमेश्वर का पुत्र, स्वर्ग का तेजस्वी सेनापति, पतित मानव जाति के लिए दया से संवेदनशील हो गया। भटके हुए संसार की दुर्दशा देखकर उसका हृदय असीमित दयाभाव से विचलित हो गया। लेकिन पवित्र प्रेम ने मनुष्य के उद्धार हेतु एक योजना तैयार की। परमेश्वर की खंडित व्यवस्था पापी का जीवन मांगती थी। समस्त सृष्टि में एक ही ऐसा था जो इस दावे की संतुष्टि कर सकता था। ईश्वरीय व्यवस्था परमेश्वर तुल्य पवित्र है, इसलिए उसके उल्लंघन का प्रायश्चित भी वही कर सकता था जो परमेश्वर के बराबर है। यीशु के अलावा कोई भी पतित मनुष्य को व्यवस्था के प्रकोप से उद्धार दिलाने में और स्वर्ग के साथ उसका सामंजस्य कराने में सक्षम नहीं था। पाप का दोष और कलंक यीशु स्वयं धारण करने वाला था। वह पाप जो परमेश्वर के लिए इतना अपमानजनक था कि वह पिता और पुत्र को अलग कर देता। संताप में डूबकर भी वह विनाश प्राप्त मनुष्य जाति को बचाने वाला था। पिता के सम्मुख यीशु ने मनुष्य के निमित्त अनुनय किया और इस समय स्वर्ग की सेना अत्यंत गहरी व अकथनीय रुचि के साथ परिणाम की प्रतीक्षा करती रही। वह रहस्यमयी घनिष्ठ बातचीत देर तक चलती रही। मनुष्य के पतित पुत्रों के लिए मेल की सम्मति, जकर्या 6:143। उद्धार की योजना पृथ्वी की सृष्टि से पहले तैयार की जा चुकी थी। प्रकाशित वाक्य 1:8 के अनुसार वह जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, यीशु ही है। फिर भी दोषी मानव जाति हेतु अपने पुत्र की बलि चढ़ाना जगत के राजा के लिए संघर्षपूर्ण था। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओह, उद्धार का रहस्य! परमेश्वर का प्रेम उस जगत के लिए जो उससे प्रीति नहीं रखता था, जो समझ से बिल्कुल परे है, उस प्रेम की गहनता को कौन समझ सकता है? युगों तक भावस्मरणीय बुद्धिजीवी उस अबोधगम्य प्रेम के रहस्य को समझने की चेष्टा करते हुए विस्मय और आराधना भाव से भरे रहेंगे।
और परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। दूसरा कुरिन्थियों 5:19।
मनुष्य पाप के कारण इतना पदावनत हो गया था कि उसका स्वयं की सामर्थ्य से परमेश्वर, जिसका स्वभाव पवित्र और भला है, से सामंजस्य असंभव था। मनुष्य को व्यवस्था की दंडाज्ञा से छुटकारा दिलाने के पश्चात मसीह मानव के प्रयत्न के साथ ईश्वरी शक्ति को जोड़ सकता था। इस तरह परमेश्वर के प्रति पश्चाताप और मसीह में विश्वास द्वारा आदम के पतित पुत्र एक बार फिर परमेश्वर के पुत्र बन सकते थे। 1 यूहन्ना 3:2। इस योजना में संपूर्ण स्वर्ग का असीम त्याग सम्मिलित था और केवल यही मनुष्य के उद्धार को सुरक्षित करने में सक्षम था। जब मसीह ने स्वर्गदूतों के समक्ष उद्धार की योजना को रखा, वे प्रसन्न न हो सके, क्योंकि मनुष्य के उद्धार का मूल्य था उनके सेनापति की अकथनीय पीड़ा। आश्चर्यचकित और दुखी होकर उन्होंने उसकी बातों को सुना कि किस तरह वो स्वर्ग की पवित्रता और शांति से, उसके आनंद, महिमा और अमरता से नीचे उतरकर पृथ्वी से जुड़े कलंक, व्यथा और मृत्यु को सहन करने हेतु उसकी अधोगति के संपर्क में आने को था। उसे पापी और पाप की दंडाज्ञा के बीच खड़ा होना था और फिर भी बहुत कम उसे परमेश्वर का पुत्र कहलाने की स्वीकृति देने को थे। स्वर्ग सम्राट के ऊंचे पद को त्याग कर उसे स्वयं को दीन मनुष्य के रूप में अवतरित कर अपने अनुभव से उन दुखों और प्रलोभनों से परिचित होना था जिन्हें मनुष्य को सहना था। यह इसलिए आवश्यक था ताकि वह प्रलोभन में पड़े मनुष्यों की सहायता कर सके। 2:18। शिक्षक के रूप में लक्ष्य पाने के पश्चात उसे दुष्ट मनुष्यों के हाथों में सौंप दिया जाना था और उसे हर उस अपमान और प्रताड़ना का पात्र बनाया जाना था जिसकी प्रेरणा शैतान उन्हें देता। अपराध बोध में दबे पापी समान, स्वर्ग और धरती के बीच लटके हुए उस पापी के समान अत्यधिक निर्मम मृत्यु को प्राप्त होना था, जिसके सदृश होना स्वर्गदूतों के लिए असंभव था, और जिस दृश्य से उन्होंने अपने चेहरे ढांक लिए, ऐसी भयावह यातना के कई पहर मसीह को व्यतीत करने थे। आज्ञा उल्लंघन का अपराध बोध, समस्त संसार के पापों का भार उसके ऊपर आने पर उसे आत्मा की तीव्र व्यथा को पिता के मुंह फेर लेने को सहन करना था। स्वयं को मनुष्य हेतु बलिदान के रूप में अर्पण करते हुए स्वर्गदूत अपने सेनाध्यक्ष के चरणों में झुक गए, लेकिन एक स्वर्गदूत का जीवन ऋण का भुगतान नहीं कर सकता था। मनुष्य के उद्धार की क्षमता केवल उसके सृजनहार में थी। फिर भी उद्धार की योजना में स्वर्गदूतों को एक भूमिका का निर्वाह करना था। इब्रानियों 2:9 में लिखा है, यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था मृत्यु का दुख उठाने के लिए, क्योंकि मसीह को मानव रूप धारण करना था, उसकी सामर्थ्य स्वर्गदूतों से कम होनी थी, और उन्हें उसकी सेवा में रहना था, और उसकी पीड़ा के समय उसे शक्ति और शांति का आभास कराना था। इब्रानियों 1:14 के अनुसार, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? दुष्ट स्वर्गदूतों की शक्ति और शैतान द्वारा चारों ओर फैलाए अंधकार से अनुग्रह की प्रजा की सुरक्षा करना उनका कार्य था। अपने स्वामी की व्यथा की पराकाष्ठा और अपमान के साक्ष्य, स्वर्गदूत संताप और रोष से भरकर उसे उसके हत्यारे से मुक्त कराना चाहेंगे, लेकिन उन्हीं जो कुछ भी वे देखने वाले थे उसे घटित होने से रोकने हेतु हस्तक्षेप नहीं करना था। यह उद्धार की योजना का एक भाग था कि मसीह दुष्ट मनुष्यों के तिरस्कार और अपशब्दों को सहन करे, और उसने मनुष्य का उद्धारकर्ता बनने के समय इसकी सहमति दी थी। मसीह ने स्वर्गदूतों को आश्वस्त किया कि अपनी मृत्यु के माध्यम से कई मनुष्यों को बचा पाएगा, और जिसके पास मृत्यु की शक्ति है उसका विनाश करेगा। मनुष्य ने जिस राज्य को अवज्ञा के कारण गवा दिया था उसे वो पुनः प्राप्त करेगा। बचाए हुए लोग उस राज्य को उसके साथ विरासत के रूप में पाएंगे और सदा के लिए उसमें वास करेंगे। पाप और पापियों को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा ताकि वे स्वर्ग या पृथ्वी की शांति भंग न कर सकें। उसने स्वर्गीय समूह से अपने पिता द्वारा स्वीकृत योजना से सहमत होने को कहा, और इस कारण प्रसन्न होने को कहा कि उसकी मृत्यु के माध्यम से पतित मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेलजोल पुनः स्थापित हो जाएगा। फिर स्वर्ग अकथनीय हर्ष से भर गया। उद्धार पाए हुए संसार की महिमा और सुखद अनुभूति, जीवन के राजकुमार की मनोव्यथा और त्याग से बढ़कर सामने आई। स्वर्ग के आंगनों से उस गीत के प्रारंभिक राग गूंजने लगे जिन्हें बेतलहम की पहाड़ियों के ऊपर गाया जाना था। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। लूका 2:14। नई सृष्टि के उल्लास से अधिक प्रसन्नता के साथ भोर के तारों ने मिलकर गाया और परमेश्वर के सभी पुत्रों ने जय जयकार किया। अय्यूब 38:7। उद्धार का पहला संकेत मनुष्य को तब दिया गया जब वाटिका में शैतान को दंडाज्ञा की घोषणा की गई। परमेश्वर ने घोषणा की, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:45। प्रथम अभिभावकों की सुनवाई में यह कहा गया कथन उनके लिए एक प्रतिज्ञा थी। इस कथन द्वारा यह भी स्पष्ट था कि मनुष्य और शैतान के बीच युद्ध में महान शत्रु की पराजय निश्चित थी। आदम और हवा धर्मी न्यायकर्ता के सामने अपराधी के रूप में खड़े थे और आज्ञा उल्लंघन की दंडाज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अपने हिस्से में आने वाले दुखों और परिश्रम से भरे जीवन के बारे में या उनके मिट्टी में लौट जाने की व्यवस्था के बारे में सुनने से पूर्व उन्होंने वे शब्द सुने जिनसे उनमें आशा उत्पन्न हुई। हालांकि उन्हें अपने महान शत्रु के आधिपत्य को भुगतना था, लेकिन वे निर्णायक विजय की आशा कर सकते थे। जब शैतान ने सुना कि स्त्री और उसके बीच और उसके वंश और स्त्री के वंश के बीच शत्रुता होगी, तो वो समझ गया कि मानव स्वभाव को भ्रष्ट करने का कार्य अवरुद्ध होगा और किसी साधन से मनुष्य को इस योग्य बनाया जाएगा कि वो उसकी शक्ति का प्रतिरोध कर सके। लेकिन फिर भी जब उद्धार की योजना स्पष्ट रूप से सामने आई, तो शैतान अपने दूतों के साथ प्रसन्न हुआ कि मनुष्य के पतन पश्चात वो परमेश्वर के पुत्र को उसके ऊंचे पद से नीचे उतार पाएगा। उसने धरती पर अपने अब तक की योजनाओं की सफलता की घोषणा की। उसने यह भी दावा किया कि मसीह के मानव रूप धारण करने पर उसको भी पराजित किया जा सकता था और फिर पतित मानव जाति का उद्धार रोका जा सकता था। स्वर्गदूतों ने हमारे प्रथम अभिभावकों को उनके उद्धार हेतु तैयार की गई योजना के बारे में और स्पष्टता से बताया। आदम और उसकी संगिनी को आश्वासन दिया गया कि उनके गंभीर पाप के बावजूद उन्हें शैतान के नियंत्रण में नहीं छोड़ा जाएगा। परमेश्वर का पुत्र अपने जीवन के त्याग से मनुष्य को उसके पापों की दंडाज्ञा से मुक्ति दिलाने को तैयार था। उनके लिए परख अवधि का प्रावधान रखा गया, जिसके दौरान पश्चाताप और मसीह में विश्वास द्वारा वे फिर से परमेश्वर की संतान बन सकेंगे। उनके आज्ञा उल्लंघन ने जिस त्याग की मांग की, उससे आदम और हवा को परमेश्वर की व्यवस्था की पवित्रता ज्ञात हुई, और उन्होंने पाप का अपराध और उसके गंभीर परिणामों को उस दृष्टिकोण से देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा था। वेदना और ग्लानि से भरपूर उन्होंने विनती की कि दंडाज्ञा उसे न दी जाए, जिसका प्रेम उनकी प्रसन्नता का स्रोत था, बल्कि उन्हें और उनके आने वाले वंशों को दी जाए।
उन्हें कहा गया कि यहोवा की व्यवस्था धरती और स्वर्ग में उसकी सत्ता की नींव है, और उस व्यवस्था के उल्लंघन के लिए एक स्वर्गदूत का जीवन भी त्याग के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य को उसकी पतित अवस्था में मिलने के लिए व्यवस्था के किसी भी सिद्धांत को परिवर्तित या निरस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन परमेश्वर का पुत्र, जिसने मनुष्य को बनाया, उसके लिए क्षतिपूर्ति कर सकता था। जैसे आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण मृत्यु और दुर्दशा का प्रवेश हुआ, वैसे ही मसीह का त्याग जीवन और अमरता प्रदान करेगा। केवल मनुष्य ही नहीं, लेकिन पाप के परिणाम स्वरूप धरती भी दुष्ट के अधीनस्थ हो गई थी, और उद्धार की योजना के माध्यम से उसको पूर्वावस्था में लाना था। सृष्टि के समय आदम को पृथ्वी पर आधिपत्य सौंपा गया था, लेकिन प्रलोभन के प्रति समर्पण के कारण वो शैतान के अधीनस्थ हो गया। जो व्यक्ति जिससे हार गया है, वो उसका दास बन जाता है। दूसरा पात्रस 2:49। जब मनुष्य शैतान का दास बन गया, तो उसका आधिपत्य उसके विजेता के पास चला गया। इस तरह शैतान इस संसार का ईश्वर, दूसरा कुरंथियों 4:4 बन गया। मूलतः आदम को दिया हुआ पृथ्वी का आधिपत्य शैतान ने हड़प लिया, लेकिन मसीह दंडाज्ञा का मूल्य चुकाकर न केवल मनुष्य को स्वतंत्र कराने वाला था, बल्कि आदम द्वारा गवाए आधिपत्य को पुनः प्राप्त करने वाला था। मीका 4:8 में कहा गया, हे ऐदर के गुम्मट, हे सीयोन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। प्रेरित पौलुस भी मोल लिए हुओं के छुटकारे की ओर संकेत करता है, इफिसियों 1:14। परमेश्वर ने धरती को पवित्र और प्रसन्न प्राणियों के निवास स्थान के लिए सजा था। यशाया 45:18 में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। वो प्रयोजन तभी संपन्न होगा जब परमेश्वर की सामर्थ्य से नवीकृत और पाप और दुख से मुक्त वो बचाए हुए लोगों का सनातन आवास बन जाएगी। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे, और फिर शाप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। भजन संहिता 37:29, प्रकाशित वाक्य 22:3। निष्कपट आदम अपने सृष्टिकर्ता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क का आनंद लेता था, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य में दूरी आ गई, और अब केवल मसीह द्वारा की गई क्षतिपूर्ति ही इस अगाध गर्त को पाटकर आशीष के संचार और पृथ्वी के स्वर्ग द्वारा उद्धार को संभव करा सकती थी। अपने सृष्टिकर्ता तक प्रत्यक्ष पहुंच से मनुष्य अभी भी वंचित था, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ मसीह और स्वर्गदूतों के माध्यम से संपर्क बनाए रखना था।
इस तरह अदन की वाटिका में दंडाज्ञा की घोषणा से लेकर जल प्रलय तक और उसके आगे परमेश्वर के पुत्र के पहले आगमन तक मानव जाति के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं आदम को प्रकाशित की गईं। उसे ये भी बताया गया कि मसीह का त्याग समस्त संसार को बचाने के लिए पर्याप्त मूल था। लेकिन कई लोग प्रायश्चित और आज्ञापालन के जीवन के बजाय पाप के जीवन का चयन करेंगे। आने वाली पीढ़ियों द्वारा अपराध बढ़ेगा और मानव जाति और जीव जंतुओं पर पाप का श्राप और भारी होता चला जाएगा। स्वयं के चुने पाप के मार्ग के कारण मनुष्य की आयु छोटी हो जाएगी। उसके नैतिक और विवेक संबंधी योग्यता और शारीरिक डीलडॉल और संयम में तब तक गिरावट आएगी जब तक ये संसार हर तरह की पीड़ा से ग्रस्त न हो जाएगा। प्रवृत्ति और मनोभाव में लिप्त मानव उद्धार की योजना के महान सत्य को महत्व देने में असमर्थ हो जाएगा। फिर भी मसीह स्वर्ग का त्याग करने में अपने उद्देश्य को थामे हुए मनुष्य में रुचि दिखाता रहेगा और उन्हें अपनी कमियां और दुर्बलताएं उसमें छिपाने का आमंत्रण देगा। जो भी विश्वास में उसके पास आएगा उसकी हर आवश्यकता को वो पूरी करेगा। और हमेशा कुछ ऐसे मनुष्य होंगे जो परमेश्वर के ज्ञान को संरक्षित रखेंगे और प्रचलित अधर्म के मध्य निष्कलंक रहेंगे। बलि की भेंट परमेश्वर द्वारा नियत थी ताकि वो मनुष्य के लिए उसके पाप की अनुतापी स्वीकृति और उद्धारकर्ता के प्रति अपने विश्वास के अंगीकार का अनंत स्मरण पत्र हो। इन भेंटों का उद्देश्य पतित मानव जाति पर इस गंभीर सत्य की छाप को छोड़ना था कि मृत्यु पाप का परिणाम है। आदम के लिए पहली बलि की भेंट अत्यंत दर्दनाक विधि थी। उसे प्राण लेने के लिए हाथ उठाना था और प्राण केवल परमेश्वर दे सकता था। उसने पहली बार मृत्यु को देखा और वो समझ गया कि यदि वो आज्ञाकारी होता तो ना ही मनुष्य और ना ही कोई जंतु मृत्यु को प्राप्त होता। निर्दोष की हत्या करते समय वो इस विचार के डर से थरथराने लगा कि उसके पाप के कारण परमेश्वर के निष्कलंक मेमने का रक्त बहाया जाएगा। इस दृश्य को देख उसे अपने पाप की गंभीरता का और भी गहन और विस्तृत आभास हुआ। उसके पाप की क्षतिपूर्ति केवल परमेश्वर का प्रिय पुत्र कर सकता था और वो उस असीमित अच्छाई पर आश्चर्य करने लगा जो अपराधी को बचाने के लिए ऐसी छुड़ौती देगी। आशा की किरण ने उस अंधकारमय और भयानक भविष्य को प्रकाशवान बना दिया और अत्यंत उजाड़ होने से बचा लिया। लेकिन उद्धार की योजना में मनुष्य की मुक्ति से बढ़कर एक व्यापक और गंभीर उद्देश्य निहित था। मसीह पृथ्वी पर केवल इसी के लिए नहीं आया। ऐसा भी नहीं था कि इस संसार के निवासी उसकी व्यवस्था को उस तरह मान्यता दे जैसी उसे मिलनी चाहिए, बल्कि इस योजना के माध्यम से सृष्टि के समक्ष परमेश्वर के चरित्र को न्यायसंगत सिद्ध करना था। दूसरे ग्रहों एवं मनुष्य के विवेक का प्रभावित होना मसीह के महान त्याग का परिणाम था और मसीह इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। जब कूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व उसने कहा, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। यूहन्ना 12:31-32। मनुष्य के उद्धार के लिए मसीह के मरने की भूमिका न केवल उसके लिए स्वर्ग को उसकी पहुंच की सीमा में ले आता, वरन संपूर्ण सृष्टि के समक्ष परमेश्वर और उसके पुत्र को शैतान के उपद्रव संबंधित व्यवहार के लिए न्यायसंगत ठहराती। वो परमेश्वर की व्यवस्था की स्थिरता को स्थापित करती और पाप के परिणाम और स्वभाव को प्रकट करती। प्रारंभ से ही महान संघर्ष का विषय परमेश्वर की व्यवस्था थी। शैतान ने परमेश्वर को अन्यायी प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था। उसकी व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उसने सृष्टि की भलाई हेतु उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता जताई। व्यवस्था पर आक्रमण कर वो व्यवस्था के रचयिता के अधिकार को पराजित करना चाहता था। संघर्ष में ये दिखाना था कि ईश्वरीय प्रावधान त्रुटिपूर्ण और परिवर्तनीय थे या सिद्ध और अपरिवर्तनीय थे।
जब शैतान को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया, उसने पृथ्वी को अपना राज्य बनाने का निश्चय किया। आदम और हवा पर प्रलोभन के माध्यम से विजय पाने के बाद
उसने सोचा कि उसने संसार पर आधिपत्य पा लिया। उसने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना शासक चुना है। उसने दावा किया कि पापी को क्षमा प्रदान होना असंभव था, और इसलिए पतित मानव जाति उसकी यथोचित प्रजा थी और संसार उसका था। परंतु परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को, जो उसके तुल्य था, पाप की दंडाज्ञा भुगतने के लिए दिया, और इस तरह उसने मनुष्य को अपने पक्ष में पुनः बहाल करने और अदन में लौटने का रास्ता बनाया। मसीह ने मनुष्य को पाप मुक्त करने और संसार को शैतान की पकड़ से बचाने का दायित्व लिया। स्वर्ग में प्रारंभ हुआ महान संघर्ष का निर्णय इसी संसार में उसी रणभूमि पर होना था जिसे शैतान ने उसका होने का दावा किया था। मसीह का दीन होकर पतित मनुष्य को बचाना समस्त सृष्टि का चमत्कार था। यह वो रहस्य था जिसे अन्य ग्रहों के निष्पाप बुद्धिजीवी समझने की चेष्टा करते थे कि मसीह, जो अपनी नियति से विशाल सृष्टि के प्राणी की प्रत्येक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हर नक्षत्र और ग्रह का संचालन करता था, वह अपनी महिमा को त्याग कर मानव रूप को धारण करने को सहमत हो गया। जब मसीह इस संसार में मानव रूप से आया और जैसे जैसे वह चरनी से लेकर कलवरी तक के रक्त रंजित पथ पर चला, सभी उसके पीछे चलने के बहुत इच्छुक थे। जो अपमान और तिरस्कार उसने सहा, उसे स्वर्ग ने चिन्हित किया और माना कि वह शैतान का भड़कावा था। उन्होंने यह भी देखा कि विरोधी साधनों के कार्य प्रगति कर रहे थे। शैतान मानव जाति पर अंधकार, व्यथा और आपदा उंडेल रहा था, और मसीह उसका प्रतिकार कर रहा था। उन्होंने अंधकार और प्रकाश के बीच युद्ध को भीषण होते देखा, और जैसे ही कूस पर लटके यीशु ने अपने अंतिम यातना के पलों में पुकारा पूरा हुआ, यूहन्ना 19 आयत 30, वैसे ही विजय की जय जयकार हर ग्रह और स्वर्ग में गूंज उठी। इस संसार में युगों से चला आ रहा महान संघर्ष का अब निर्णय हुआ और मसीह को विजेता माना गया। उसकी मृत्यु ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या पिता और पुत्र का मनुष्य के लिए प्रेम इतना पर्याप्त था कि वे आत्मत्याग और बलिदान की भावना का प्रयोग कर सकते थे। शैतान ने झूठे और हत्यारे समान अपना वास्तविक चरित्र दिखा दिया था। यह स्पष्ट हो गया था कि यदि उसे स्वर्ग के बुद्धिजीवियों को नियंत्रित करने की अनुमति दे दी जाती तो वह उसी भावना को दर्शाता जैसी उसने अपने अधीनस्थ मनुष्य के पुत्रों पर राज करने में दर्शाई थी। निष्ठावान सृष्टि ने एक आवाज के साथ एकीकृत होकर ईश्वरीय शासन प्रबंध का गुणगान किया। यदि व्यवस्था परिवर्तनशील होती तो मनुष्य को मसीह के त्याग के बिना बचाया जा सकता था, लेकिन यह तथ्य कि पतित जाति के लिए मसीह का जीवन दान अनिवार्य था, इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर की व्यवस्था पापी को व्यवस्था के अधिकार से निवारण नहीं दिला सकती। यह प्रमाणित किया गया कि पाप का प्रतिदान मृत्यु है। जब मसीह मृत्यु को प्राप्त हुआ तब शैतान का विनाश निश्चित हो गया, लेकिन यदि कूस पर व्यवस्था समाप्त हो जाती जैसा कि बहुत लोग दावा करते हैं तो यह प्रमाणित होता कि परमेश्वर के पुत्र ने वेदना और मृत्यु को इसलिए सहन किया ताकि शैतान को वह मिल सके जो उसने मांगा था, और बुराई के राजकुमार की विजय होती और ईश्वरीय सत्ता के विरुद्ध उसके आरोप प्रमाणित हो जाते। यह तथ्य कि मसीह ने मनुष्य के पाप की दंडाज्ञा सही सभी रचित बुद्धिजीवियों के लिए प्रबल तर्क है कि व्यवस्था अपरिवर्तनीय है, कि परमेश्वर धर्मी, दयावान और आत्मत्यागी है, और उसकी सत्ता के शासन प्रबंध में असीम न्याय और कृपा का मेल है।